नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नाट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जैसन श्रायर की ब्लड स्वेट एंड पिक्सल्स वीडियो गेम निर्माण की पर्दे के पीछे की रिपोर्ट आज है। यह कोई तकनीकी मार्गदर्शिका या खेलों की समीक्षा नहीं, बल्कि उन लोगों, निर्णयों और दबावों का विश्लेषण है जिनके कारण लोकप्रिय खेल बनते, बदलते, देर से पूरे होते या रद्द हो जाते हैं। श्रायर ने बड़े स्टूडियो और स्वतंत्र रचनाकारों दोनों के अनुभवों को 10 अलग खेल निर्माण कथाओं में रखा है। इनमें डियाब्लो 3, डेस्टिनी, द विचर 3, अनचार्टेड 4, शवल नाइट और स्टार्ड्यू वैली जैसे खेल शामिल हैं। पुस्तक का मुख्य प्रश्न सीधा है, इतने बड़े बाजार और प्रतिभाशाली टीमों के बावजूद खेल बनाना इतना अनिश्चित और थकाऊ काम क्यों है? उत्तर में यह इंटरैक्टिव डिजाइन, बदलती तकनीक, अस्पष्ट समय सीमाओं, रचनात्मक मतभेदों और क्रंच नाम की अत्यधिक ओवरटाइम संस्कृति को जोड़ती है। इसका उद्देश्य खेलों को केवल उपभोक्ता उत्पाद नहीं, बल्कि कला, सॉफ्टवेयर, व्यवसाय और श्रम के जटिल संगम के रूप में समझाना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, इंटरैक्टिव माध्यम होने से खेलों की योजना साधारण सॉफ्टवेयर से अलग बनती है। पुस्तक का एक मूल तर्क है कि वीडियो गेम का निर्माण इसलिए कठिन है क्योंकि खिलाड़ी केवल सामग्री देखता नहीं, उसके साथ क्रिया करता है। फिल्म या पुस्तक में रचनाकार अनुभव की गति को काफी हद तक नियंत्रित कर सकता है। खेल में खिलाड़ी किसी दिशा में जा सकता है, किसी नियम का अनपेक्षित उपयोग कर सकता है, किसी चुनौती को बहुत आसान या बहुत कठिन पा सकता है, अथवा उस सामग्री को पूरी तरह छोड़ सकता है जिस पर टीम ने लंबा समय लगाया हो। इसलिए कहानी, दृश्य, ध्वनि, नियंत्रण, स्तर रचना और तकनीकी प्रदर्शन को अलग अलग सफल बनाना पर्याप्त नहीं है। उन्हें एक साथ ऐसे काम करना होता है कि अनुभव समझने योग्य, स्थिर और आनंददायक बने। श्रायर यह भी दिखाते हैं कि खेल में किसी बदलाव का प्रभाव कई विभागों तक फैलता है। किसी नई क्षमता या नियम से एनिमेशन, इंटरफेस, शत्रु व्यवहार, स्तरों और परीक्षण की जरूरत बदल सकती है। इसी कारण शुरुआती डिजाइन दस्तावेज अंतिम उत्पाद की विश्वसनीय भविष्यवाणी नहीं होते। पुस्तक खेल निर्माण को रैखिक उत्पादन के बजाय लगातार परीक्षण, प्रतिक्रिया और संशोधन की प्रक्रिया के रूप में रखती है। यह दृष्टि खिलाड़ियों को समझाती है कि दिखने में मामूली फीचर भी विकास के दौरान असाधारण जटिलता पैदा कर सकता है। दूसरा, बदलती तकनीक और अलग औजार रचनात्मक फैसलों को उत्पादन जोखिम में बदल देते हैं। श्रायर के अनुसार तकनीक खेल विकास का केवल आधार नहीं, बल्कि अनिश्चितता का सक्रिय स्रोत है। नई पीढ़ी के हार्डवेयर, नए इंजन, ऑनलाइन ढांचे और ग्राफिक्स की बढ़ती अपेक्षाएं टीमों को ऐसे औजारों पर काम करने को मजबूर कर सकती हैं जो अभी परिपक्व नहीं है। कई बार स्टूडियो अपना इंजन या पाइपलाइन बनाता है क्योंकि उसे अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप क्षमताएं चाहिए होती है, लेकिन इससे सामग्री बनाने वाले कलाकारों और डिजाइनरों का काम धीमा पड़ सकता है यदि औजार अस्थिर, अधूरे या कठिन हो। पुस्तक में बड़े खेलों की कहानियां बताती है कि तकनीकी निर्णय जल्दी लेने पड़ते हैं, पर उनके परिणाम वर्षों तक परियोजना को प्रभावित करते हैं। किसी इंजन की सीमा मिलने पर समाधान केवल कोड बदलना नहीं होता, बल्कि दुनिया के आकार, दृश्य गुणवत्ता, मिशन, कैमरा या खेल के नियमों में समझौता भी हो सकता है। यह संबंध उस धारणा को चुनौती देता है कि बेहतर तकनीक अपने आप बेहतर खेल बना देगी। तकनीकी क्षमता रचनात्मक विकल्प खोलती भी है और नई निर्भरताएं भी बनाती है। इसीलिए पुस्तक सफल निर्माण को प्रतिभाशाली प्रोग्रामिंग का परिणाम भर नहीं मानती, बल्कि तकनीकी महत्वाकांक्षा को टीम की वास्तविक उत्पादन क्षमता से मिलाने की कला मानती है। तीसरा, फन का परीक्षण होने तक पता न चलना समय, सीमा और प्रबंधन की सबसे बड़ी समस्या है। ब्लड स्वेट एंड पिक्सल्स का सबसे उपयोगी विचार यह है कि किसी खेल का मजेदार होना पहले से मापा नहीं जा सकता। टीम अनुमान लगा सकती है कि कोई युद्ध प्रणाली, खोज, पहेली या प्रगति तंत्र आकर्षक होगा, लेकिन वास्तविक उत्तर तब मिलता है जब लोग उसे खेलते हैं। इस अंतर के कारण खेल विकास में योजना और रचनात्मक गुणवत्ता के बीच तनाव बना रहता है। निर्माता को बजट, कर्मचारियों और रिलीज तिथि के लिए अनुमान चाहिए। डिजाइनर को प्रयोग, असफल प्रोटोटाइप और बार बार सुधार का समय चाहिए। यदि परीक्षण में मुख्य क्रिया नीरस, उलझाव या असंतुलित निकले तो केवल सतही सुधार पर्याप्त नहीं होते। कभी कभी संबंधित सामग्री और तकनीक पर दोबारा काम करना पड़ता है। पुस्तक के विविध उदाहरण बताते हैं कि देरी हमेशा अव्यवस्था का प्रमाण नहीं होती, हालांकि वह महंगी और पीड़ादायक हो सकती है। कुछ देरी उस बुनियादी खोज की कीमत है कि खिलाड़ी वास्तव में क्या महसूस करेगा। फिर भी शायर असीमित प्रयोग का समर्थन नहीं करते। परियोजना को पूरा करने के लिए टीम को तय करना होता है कि किस स्तर की गुणवत्ता पर्याप्त है और किन विचारों को हटाना चाहिए। यही निर्णय खेल निर्माण को परियोजना प्रबंधन और कलात्मक निर्णय दोनों बनाता है। चौथा, क्रंच संस्कृति समर्पण की कहानी के साथ श्रम और नेतृत्व की विफलताओं को भी उजागर करती है। पुस्तक में क्रंच यानी लंबे समय तक अत्यधिक ओवरटाइम लगभग हर प्रकार की परियोजना को जोड़ने वाला विषय है। यह केवल विशाल प्रकाशकों की समस्या के रूप में नहीं आता, बल्कि छोटे स्टूडियो और स्वतंत्र निर्माताओं के अनुभवों में भी दिखाई देता है। श्रायर इसे खेल पूरा करने के लिए कर्मचारियों के जुनून और जिम्मेदारी से जोड़ते हैं, लेकिन इसकी मानवीय लागत को छिपाते नहीं। थकान, पारिवारिक जीवन पर दबाव, स्वास्थ्य संबंधी असर और रचनात्मक क्षमता में कमी सभी ऐसे परिणाम हैं जिन्हें अंतिम रिलीज की प्रशंसा अक्सर धक देती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुस्तक क्रंच को किसी एक आलसी व्यक्ति या एक खराब टीम की सरल समस्या नहीं बताती। अस्पष्ट डिजाइन, देर से बदली प्राथमिकताएं, विपणन या सार्वजनिक प्रदर्शन की तारीखें, तकनीकी बाधाएं और प्रकाशक का दबाव मिलकर इसे पैदा कर सकते हैं। फिर भी इन कारणों से क्रंच अपने आप उचित नहीं हो जाता। पुस्तक पाठक को यह देखने का अवसर देती है कि समय सीमा का जोखिम अक्सर कर्मचारियों के निजी समय पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इससे नेतृत्व की जिम्मेदारी, यथार्थवादी दायरा तय करने और टिकाऊ उत्पादन पद्धतियों पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। अंत में बड़े स्टूडियो और स्वतंत्र निर्माताओं की तुलना से पैमाने के अलग जोखिम सामने आते हैं। श्रायर की चयन पद्धति पुस्तक को खास बनाती है, क्योंकि वह केवल प्रसिद्ध विशाल स्टूडियो की कथाएं नहीं सुनाती। डेस्टिनी, डियाब्लो 3 और अनचार्टेड 4 जैसी बड़ी परियोजनाओं के साथ शवल नाइट और स्टारड्यू वैली जैसे छोटे पैमाने के निर्माण भी रखे गए हैं। तुलना से स्पष्ट होता है कि छोटे दल में निर्णय तेजी से हो सकते हैं, पर पैसा, समय और व्यक्तिगत सहन शक्ति सीमित होती है। स्वतंत्र रचनाकार को निर्माता, प्रबंधक, डिजाइनर और कभी कभी विपणनकर्ता की भूमिकाएं एक साथ निभानी पड़ती है। दूसरी ओर बड़े स्टूडियो के पास विशेषज्ञ बजट और विस्तृत उत्पादन संसाधन होते हैं, लेकिन विभागों का समन्वय, नेतृत्व परिवर्तन, प्रकाशक की अपेक्षाएं और संगठनात्मक राजनीति जटिलता बढ़ा सकते हैं। पुस्तक इस भेद को सफलता के आसान सूत्र में नहीं बदलती। छोटा होना रचनात्मक स्वतंत्रता दे सकता है, मगर अकेलापन और अनिश्चित आय भी ला सकता है। बड़ा होना संसाधन देता है, मगर नियंत्रण और संचार की समस्याएं पैदा कर सकता है। यह संतुलित तुलना बताती है कि खेल का आकार उसके जोखिमों को समाप्त नहीं करता, केवल जोखिमों का रूप बदल देता है। इसलिए पाठक हर खेल के पीछे मौजूद श्रम को एक ही उद्योग छवि से नहीं आंकता। निष्कर्ष में, यह पुस्तक मुख्यतः उन खिलाड़ियों के लिए उपयोगी है जो अपने पसंदीदा खेलों के पीछे की निर्माण प्रक्रिया को गंभीरता से समझना चाहते हैं। खेल उद्योग में प्रवेश की तैयारी कर रहे डिजाइनर, प्रोग्रामर, कलाकार, निर्माता और परियोजना प्रबंधक भी इससे लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह समय सीमा, दायरा, टीम समन्वय और परीक्षण की समस्याओं को वास्तविक परियोजनाओं के माध्यम से स्पष्ट करती है। फिर भी इसे व्यावसायिक प्रबंधन की पूर्ण पाठ्यपुस्तक नहीं समझना चाहिए। इसकी ताकत औपचारिक मॉडल देने में नहीं, बल्कि अनेक प्रतिभागियों की आवाजों से उन मॉडलों की व्यावहारिक सीमाएं दिखाने में है। श्रायर का पत्रकारिता आधारित तरीका इसे सामान्य खेल इतिहास या प्रशंसात्मक मेकिंग ऑफ सामग्री से अलग करता है। यहाँ रिलीज के बाद की सफलता केंद्र में नहीं रहती, बल्कि अधूरे औजार, बदले हुए लक्ष्य, थकी हुई टीमें और कठिन समझौते भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। 10 केस अध्ययनों का ढांचा कभी कभी अलग लेखों के संग्रह जैसा महसूस हो सकता है, और सफलता पाने वाले खेलों पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान होने से उद्योग की विफलताओं का पूरा परिदृश्य नहीं बनता। इसके बावजूद यही संरचना अलग अलग प्रकार की परियोजनाओं की सीधी तुलना संभव करती है। पुस्तक का स्थायी मूल्य यह है कि यह खेलों के जादू को नष्ट किए बिना उनके पीछे के श्रम को दिखाई देती है। पाठक समझता है कि एक यादगार इंटरैक्टिव अनुभव तकनीकी कौशल, रचनात्मक संशोधन और अक्सर असहज मानवीय कीमत के बीच बनता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जेसन श्रायर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।